आज का प्रातः क्लास है 13/8/1964। रिकॉर्ड चला है, कौन आया है मेरे मन के द्वारे? शिव बाबा अपने मीठे मीठे सिकीले सालिग्रामों को बैठ समझाते हैं। समझाते किसको हैं? जो सालिग्राम बने बैठे हैं, सालिग्राम चावल के समूह को सालिग्राम कहा जाता है। साली माने चावल, ग्राम माने समूह। और आत्मिक स्थिति में होते हैं तो साली अर्थात चावल को याद किया जाता है, जिसका देह अभिमान का छिलका उतरा हुआ है। दूसरे शब्दों में सालिग्राम की बटिया भी है, शिवलिंग बड़ा रूप है, महिमा बड़ी है, महत्ता बड़ी है, उसके मुकाबले शालिग्राम की बटिया बहुत छोटी है। जैसे कि सब शिव के बच्चे हैं, उन बच्चों को बैठ बाप समझाते हैं, तो शालिग्राम ही शिव के बच्चे हुए। बच्चे जानते हैं हमको, वो पढ़ाते हैं जिनको कोई रिंचक भी नहीं जानते। बल शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु वहां तो इतना बड़ा शिवलिंग देखते हैं, अब इतना बड़ा कोई है थोड़े ही। शिवलिंग के चारों ओर शालिग्राम पड़े रहते हैं, वो भी कोई इतने बड़े हैं थोड़े ही। तो वो भक्त थोड़े ही समझते हैं हमारा बाबा बिंदी है। जो बच्चे शिव बाबा को इतना बड़ा समझकर याद करते होंगे तो कहेंगे वो बच्चे भी भूले हुए हैं। किसको? शिव बाबा को, क्योंकि इतना बड़ा रूप वो तो होता ही नहीं। बाप समझाते हैं, मैं तो बिंदी मिसल हूं, बिंदु को कितना भी छोटा करते जाओ, अति सूक्ष्म ते सूक्ष्म बन जाएगा। तो अब बिंदी को कोई क्या समझ सकेगा? बल कोई कहते हैं अखंड ज्योति है, अखंड ज्योति स्वरूप है, फलाना है, परंतु नहीं, वो तो बिंदी है। और उस बिंदी को याद करना बड़ा मुश्किल है। क्या मुश्किल है? हैं? क्या मुश्किल है? یاد کرنا مشکل ہے. کیوں؟ چمکتی ہوئی بندی، چھوٹی سی بندی مشکل کیوں ہے؟ ہلکی سی بندی ہے، روپ نہیں بندی ہے نا، نہیں کوئی سی بھی بندی، بندی سوروپ میں ٹکنا مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ ہم دیہ ابھیمانی بن پڑے، آتمک استھتی میں، سوکھم استھتی میں ٹکنا مشکل ہو جاتا ہے، گھڑی گھڑی بھول جاتے ہیں. ابھی ابھی ہم ٹکنا چاہیں بندو کی یاد میں، تھوڑی دیر یاد رہتی، پھر بھول جاتے. کیونکہ بھکتی مارگ میں 63 جنم سے ہرے ہوئے ہیں. کس بات کے لیے؟ اتنا بڑا شیولنگ پر پھول آدی چڑھانے کے لیے، پوجا کرنے کے لیے ہرے ہوئے ہیں تو یاد رہتا ہے، پرنتو یہ گھڑی گھڑی بھول جاتے ہیں کہ وہ بندی ہے، ہمارا بابا بندی روپ ہے. سارے ڈرامہ میں ان کا جو پارٹ ہے وہ بجاتے ہیں. اب بندی کی بیٹھ میں ہم کریں گے کیا؟ یہ مہما کریں گے کہ بندی سکھ کا ساگر ہے، شانتی کا ساگر ہے. کتنا چھوٹا بندی روپ ہے. بچے پوچھتے ہیں کہ کس کو دھیان میں رکھیں؟ ان باتوں کو تو سمجھدار سمجھ سکیں گے، نہیں تو وہی شیو کا لنگ یاد آ جاتا ہے. اور کرشن تو اچھی ریتی بدھی میں بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ ہاتھ پاؤں والا دیہ دھاری ہے، اور یہ تو بندی ہے. گیتا میں نراکار کی جگہ ساکار کا نام کیوں ڈال دیا؟ کیونکہ نراکار کو یاد کرنا مشکل، اور ساکار سجے سجائے کرشن کے روپ کو یاد کرنا بڑا آسان ہو گیا. ہے تو بندی. گیت میں بھی کہتے ہیں یاد کروں تو یاد نہ آوے، تو پھر وہ سورت یا بندر پھول ہے نا. اتنی بندی ہے، گیان کا ڈانس کرتے رہتے ہیں. کیا مطلب؟ مانا جو آتما جتنا سوکھم روپ دھارن کرے گی وہ اتنا ہی گیان کی گہرائیوں میں زیادہ جا سکے گی. کہتے ہیں سپنوں کا سنسار لیے، سپنوں کا سنسار کہتے ہیں. اب بیتی ہوئی بات کو سپنا کہا جاتا ہے، سپنا بنا سنسار جو بیت گیا ہے وہ سارا سپنا تمہاری بدھی میں آتا ہے. سارا برہمانڈ، مول وطن، سوکھم وطن، ستیوگ، تریتا، دواپر، کلیوگ، سارا سپنا ہو گیا. جو پاسٹ ہو گیا ہے وہ سپن ہے. اب کلیوگ کا بھی انت ہے، तो ये सपने का संसार हुआ ना। वो हद के स्वप्न आते हैं और तुमको अभी बेहद का बुद्धि में आ गया है। क्या बुद्धि में बेहद का आ गया है? बेहद सपने का संसार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गया। सूर्यवंशी चंद्रवंशी वैश्यवंशी सब स्वप्न हो गए। इसको कहा जाता है सपनों का संसार। तेरह आठ चौसठ की वाणी का दूसरा पेज। इस सपने के संसार का राज तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। सतयुग में कितने अथाह सुख थे वो सब पास्ट हो गए। अभी तुम बच्चों को बुद्धि में आज मध्य अंत का पूरा ज्ञान है। एक बाप की ही याद रहनी चाहिए। बाप जो समझाते हैं वो समझाने और कोई तो समझा ही नहीं सकता। और तुम्हारी बुद्धि में तो सपनों का संसार है। जानते हो ये पास्ट हो गया है। तुम्हारी बुद्धि जानती है। तुमको ऊपर से लेकर के नीचे तक सारा संसार याद है। सारे संसार की नॉलेज बुद्धि में है आदि से अंत तक। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन गए हो। त्रिलोकीनाथ बनने से तुम जैसे भगवान हो जाते हो। भगवान बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। सेकंड में स्वप्न आता है तो सेकंड में तुमको सारा याद आना चाहिए कि बीज क्या होता है और झाड़ क्या होता है। झाड़ है विस्तार और बीज है सार। बाबा भी कहते हैं आदि पर्यंत का मेरे पास ज्ञान है, इसीलिए मुझे ज्ञान का सागर कहा जाता है, नॉलेज फुल कहा जाता है। जानी जाननहार भी कहते हैं, जानते हैं कि हरेक की अवस्था जैसी है वैसी ही रहेगी। अब बताओ एक एक को बैठ हम क्या जानेंगे। जो अवस्था कल पहले थी इस अवस्था में है तो तुम भी जानते हो। पुरुषार्थ करने के लिए कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, क्योंकि तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनना है। तुम जानते हो कि ये पास्ट हो गया है। ऐसे देवताएं राजी करते थे फिर जाकर के राजी करेंगे? तो तुम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये सब याद करते रहेंगे। इसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। तो देखो शिवलिंग को याद करने में तो सब हिरे हुए हैं। और आप तो समझते हैं कि बाबा ज्योतिर्लिंगम है, बिंदी कहे तो मुझे पढ़े। कोई समझते हैं वो तो अंगूठे मिसल है, क्योंकि शालिग्राम भी कैसे बनाए हैं? अंगूठे मिसल बनाए हैं। वो तो समझते हैं आत्मा छोटी है, परमात्मा बड़ा है। अभी तुम बच्चे तो जानते हो, इस कलयुगी दुनिया में इस समय देखो भव का कितना है, इनको माया का भव का कहा जाता है, माया का पांप है। कितने बड़े बड़े शिवलिंग बनाते हैं, फिर कहते हैं अभी दुनिया कितनी अच्छी बन गई है, बड़े बड़े महलमानियां अटारियां बन गए हैं। अभी देखो अमेरिका का कितना भव का है, चीजें कितनी नफीस बन गई हैं, और हम तो समझते हैं ये सब मुलम्मे की चीजें हैं जो अभी कुछ ही दिनों में खलास हो जाने वाली हैं। दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी इमारतें, डैम आदि ऐसे बनावेंगे जैसे बिल्कुल नई दुनिया है। ये सब मायावी पुरुष है ना, आसुरी संप्रदाय का भव का है। ये सब तलसम है। अभी गया कि गया, बड़े बड़े साइंस घमंडी जो है उन्हों की बुद्धि में है कि ये तो सब खत्म हो जाएंगे, एक दो को कह देते हैं ना तुम इंटरफियर ना करो नहीं तो सब खत्म हो जाएंगे। और अमेरिका तो अपने को कितना बलवान समझता है, तो जरूर सेकंड नंबर में भी होगा जो उनका सामना करे। गाया हुआ भी है, दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं, इन यादवों ने अपने कुल का नाश किया, तो ये दो बिल्ले हुए ना, वो ही अभी प्रैक्टिकल हो रहा है। क्या हद की दुनिया में कि बेहद की दुनिया में है? बेहद की दुनिया में, हद की दुनिया में नहीं, हद की दुनिया में भी तो अमेरिका और रशिया बेहद के दो बड़े बड़े बिल्ले हैं, और ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में भी बंबई और दिल्ली बड़े बड़े हैं जहां बिल्ले बैठे हुए हैं, अभी मौजूद हैं कि नहीं है। तो देखो प्रैक्टिकल हो रहा है, तुम बच्चे जानते हो, आगे भी इसी समय ही तुमने नॉलेज ली थी और अब भी ले रहे हो। बाप आकर तुमको सारी नॉलेज समझाते हैं, जैसे बाप की बुद्धि में है वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी है। क्या क्या तुम्हारी बुद्धि में है क्या? आखिरी ये दुल दो बिल्ले आपस में लड़ेंगे और मक्खन सारा हमको मिल जाएगा? तुम तो जानते हो बरोबर शिव बाबा है, शिव बूरी को कहा जाता है, इतनी छोटी सी आत्मा में भी सारा पार्ट है। और तुम्हारा तो ऑलराउंड पार्ट है। किसका माने किसका? जो भी सूर्यवंशी हैं, उनका तो ऑलराउंड पार्ट है, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक, सतयुग आदि से लेकर सतयुग त्रेता में जब तुम सुख भोगते हो तो उस समय बाप का कोई पार्ट नहीं। बाप कहते हैं मेरे से भी तुम्हारा जास्ती पार्ट है, तुम सुख में रहते हो तो मैं निर्वाण धाम में रहता हूं, मेरा कोई पार्ट नहीं। तुमने तो ऑलराउंड पार्ट बजाया है तो जरूर थकान भी तुमको हुई होगी, इसीलिए लिखा हुआ है कि भगवान ने आकर के तुम्हारे चरण दबाए। बुजुर्ग लोग कहते हैं बच्चे तुम थक गए होंगे, तुमने आधा कल्प भक्ति के धक्के घर घर में जाकर खाए हैं, भक्ति मार्ग में भटकते भटकते तुम थक जाते हो, फिर बाप आकर उजूरा देते हैं, पुजारी से पूज्य बना देते हैं। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे फिर पुजारी बने, ऐसे नहीं है कि परमात्मा ही आप ही पूज्य आप ही पुजारी है। नहीं, हम ही पूज्य और हम ही पुजारी बनते हैं। भारत ही प्राचीन अविनाशी खंड गाया जाता है, भारत है शिव बाबा की जन्मभूमि और जन्मभूमि पर ही मनुष्य कुर्बान होते हैं। कांग्रेसियों ने भी देखो कितना माथा मारा इस बात के लिए फॉरेनर्स को जन्मभूमि से बाहर निकालने के लिए। ये जन्मभूमि स्वर्ग था, फिर पांच विकारों रूपी माया रावण ने आकर के हप किया और हम तो रावण को बड़ा दुश्मन समझते हैं, ये कोई भी नहीं समझते हैं कि बड़े से बड़ा दुश्मन माया रावण है जो हमारी राजाई ही खा गया। तेरह आठ चौसठ की वाणी का तीसरा पेज, उनसे हमने ये राज्य हराया है, ये गुप्त दुश्मन है, चूहे के मुआफिक फूंक देता है, वो चूहरी काटती रहती है जो किसको पता भी न पड़े, काटते काटते एकदम दिवाला मार दिया, किसको भी पता नहीं है कि हमारा राजभाग किसने गवाया। रावण ने कैसे अप किया तो देखो, ये हद की बातें हैं या बेहद की बातें हैं? बेहद की बातें हुई ना, माया ने सारा राजभाग छीन लिया, कोई को पता नहीं है कि हमारा दुश्मन कौन है, हम कैसे कंगाल बने, कौन है दुश्मन? माया बड़ा चूहा है, आधा कल्प खाए खाए के भारत को बर्थनाट्य पैनी बना दिया। बड़ा बलवान है, अभी फिर तुम उन पर जीत पहन रहे हो छुपके से। तुम जानते हो हम कैसे गुप्त रीति राज्य लेते हैं? जैसे गुप्त रीति गवाया है, फिर लेते भी गुप्त रीति से हैं। कोई को पता भी नहीं चलता हम क्या करते हैं, क्या करते हैं है? हम याद करते हैं तो कोई को पता चलता है, है? पता भी नहीं चलता, कोई भी नहीं जानते। अभी फिर उस पर जीत पानी है। कितनी महीन राज की बातें हैं, बाबा की मदद से हम फिर राज भाग लेते हैं और कोई भी हाथ पांव नहीं चलाते हैं। गुप्त रीत से हम अपना बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं, जो आधा कल्प रहेगा वो माया चूहा तो आहिस्ते आहिस्ते खाती है। और अभी राजी तो तुम एक ही बार ले लेते हो 21 जन्मों के लिए, 84 जन्मों का राज भी तुमको समझाया है। कैसे तुमने इतने इतने जन्म लिए? तुम जानते हो सत्युग में हमारी आयु बहुत बड़ी थी, क्या कारण था है? अरे अरे योगी थे और अभी हम भोगी बन पड़े हैं। भोग सामने आया और ये गिरा, तो द्वापर कलयुग में 63 जन्म हम गिरते ही आए हैं। ये बातें बाबा बैठ समझाते हैं। कल्प कल्प माया ऐसे राज्य लेती है। कैसे? भोगी बनाए के। फिर हम भी उस माया से राज्य लेते हैं बाप की मदद से। गीत में गाते तो हैं, कौन देश से आया कौन देश है जाना, परंतु समझते नहीं है। तुम तो जानते हो आत्मा किस देश से आई है और क्यों आई है, सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में। इस सारे चक्र में, सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट है शिव बाबा का। शिव बाबा का हीरो हीरोइन का पार्ट है, सारे चक्र में या परमधाम में बैठते हैं है? किसका पार्ट है? तो परमधाम में कौन बैठते? शिव बाप परमधाम में बैठते हैं और शिव बाबा का पार्ट इस साकार सृष्टि पर है। शिव बाबा के साथ पार्टधारी कौन कौन है ये तुम जानते हो। पहले पहले जन्म देते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को, फिर तुम बच्चों को, कौन बच्चों को है? किनको सन्मुख रहते हैं? देने के लिए बोलते हैं। बच्चे बाप बिगड़ रह नहीं सकते, बाप बच्चों के बगैर रह नहीं सकते। तुम बाप के साथ मददगार ठहरे। कौन से बाप के साथ? शिव बाबा के साथ मददगार ठहरे कि बाप के साथ मददगार ठहरे? तुम बाप के साथ मददगार ठहरे कौन से टाइम पर? संगम युग में। जो यहाँ बाप के साथ मददगार रहते हैं वो वहां सारे चक्र में किसके साथ मददगार रहते हैं? शिव बाबा के मददगार रहते हैं। अभी बाप अपना पार्ट बजाए अपने धाम चले जाते हैं और तुम मददगारों को भी मुक्ति धाम ले जाते हैं। तुम मुक्ति धाम में जाए फिर जीवन मुक्ति में चले जावेंगे। कितना अच्छी रीत तुमको बुद्धि में ये बातें रखनी चाहिए। ये तुम्हारा सपनों का संसार है। जान के हो सत्युग त्रेता में देवी देवताएं थे, अभी तो नहीं है। इस गीता का कितना रुगी राज है, कैसे स्वप्नों को संसार बुद्धि में लेकर बैठे हैं, ये सारा चक्र कैसे फिरता है। जो नॉलेज बाबा में है वो हमारे में भी है, बेहद के बाप में ही ये सारी बेहद की नॉलेज है। बच्चे जानते हैं कि ये सारी नॉलेज स्वप्न हो जावेगी। ये बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। सत्युग त्रेता में ये बातें कोई की बुद्धि में नहीं होती हैं। अभी तुमको गुहे से गुहे पॉइंट्स मिलती रहती है। तो बुद्धि में सारा चक्र रहना चाहिए। भक्ति मार्ग में क्या है वो भी बुद्धि में रहे। कब से शुरू होता है? इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। भक्ति करते करते नुकसान में आ गए, अब फिर कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। माया कौड़ी जैसा बनाई देती है। बाप ज्ञान का डांस सिखलाते हैं, फिर वहां जाकर के तुम डांस करेंगे। ये सब बातें बड़ी वंडरफुल जानने लायक है। यहाँ की रस्म रिवाज वहां बिल्कुल नहीं होती है। वो है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। माया का वहां नाम निशान नहीं होता। पहले तुम बाबा को याद कर वर्षा ले लो, बाकी वहां की रस्म रिवाज जो होगी वो चलेगी। तुम पहले बाप को जान करके वर्षा तो लो। ये तो बताते हैं कि वहां की रस्म रिवाज सब नई होगी, वहां ये उत्सव आदि नहीं होंगे। यहां तो गम नशीन रहते हैं, तब फिर एक दो दिन साधमाना आदि मनाते रहते हैं, और वहां तो नित्य ही साधमाना है। रोने चिल्लाने की वहां का बात होती ही नहीं, उत्सव मनाने की बात ही नहीं। सदैव हमारे बड़े दिन होंगे। हाँ, शादी धूमधाम से होती है, कहाँ है? हाँ, संगम युग की बात है। दहेज में दास दासियां मिलती हैं, बाकी त्योहार आदि की तो दरकार ही नहीं रहती। ये है ही संगम युग की बातें जो भक्ति मार्ग के लिए गाई जाती हैं। वहां तो सदैव खुशियां ही खुशियां हैं। अच्छा, माता पिता का बाप दादा का सिकिल्दे बच्चों प्रति याद प्यार गुड मॉर्निंग। छोटे छोटे दो रात्रि क्लास हैं, एक है 7-8-64 का, ये अमृतसर अच्छा गांव है, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग दूसरे नंबर में गुरु नानक का चला है। पंजाब में महारानी महारानी महाराजा भी हुए हैं। अकाल मूर्त कहते हैं जिसको काल नहीं खा सकता। काल तो आत्माओं को भी नहीं खा सकता, क्या मतलब हुआ? अगर हम बच्चे काल से कवलित तो हो जाएं, तो आत्मिक स्थिति वाले कहे जाएंगे या देह अभिमानी कहे जाएंगे? तो हम बच्चे भी जब आत्मा बनेंगे, आत्मिक स्थिति में टिकेंगे, तो हमको कोई भी काल नहीं खा सकेगा। अमृतसर में अकाल तख्त भी बनते हैं, कहते हैं अकाल मूर्त। उनका अकाल तख्त, अब अकाल तख्त तो वास्तव में सोमनाथ मंदिर भी ठहरा। कौन सा मंदिर? जिसने किसको नाथ लिया? सोम चंद्रमा को नाथ लिया। एक अकाल तख्त है सोमनाथ का मंदिर, एक अकाल तख्त हुआ शिव का मंदिर। वास्तव में अकाल तख्त तो ये है चैतन्य में, कौन हुआ चैतन्य में अकाल तख्त? जिसमें हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं। बाबा कहते हैं मैं चैतन्य में आता हूं। कोई जड़ लिंग में नहीं आता हूं। जो सोमनाथ मंदिर में बनाई दिया है या अमृतसर में अकाल तख्त बनाई दिया है, बाद में फिर यादगार मेरा तख्त मंदिर बनाते हैं। उनको तो पता नहीं है कि आखिरी नबी परमपिता परमात्मा किस तख्त पर अथवा किस रथ पर आते हैं। बाबा कहते हैं चैतन्य में तो मैं यहां ही हूं, वहां नहीं हूं। कहां? द्वापर में अथवा कलयुग में जो अकाल तख्त बनाया हुआ है वहां नहीं हूं। चैतन्य में तो मैं यहां संगम में ही प्रत्यक्ष होता हूं, अकाल तख्त पर। बाकी भक्ति मार्ग में मंदिर बनाते हैं, फिर भी नाम अकाल तख्त अमृतसर में है। क्या नाम दिया? अमृत का तालाब। वो तो सिखों की यादगार है, हिंदुओं में भी कोई यादगार है? मानसरोवर, अमृतसर में सिखों की राजाई भी हुई है। और कोई भी धर्म नहीं है विधर्मियों के बीच जिसने राजा ही स्थापन की हो सिवाय सिख धर्म के, और कोई धर्म है? हैं? और कोई धर्म वालों ने राजा ही स्थापन नहीं की है, सिख धर्म में ही महाराजा महारानी हुए हैं। अमृतसर बहुत अच्छा गांव है, वहां से सबसे उल बच्चियां भी निकली हैं, और पहलवान सिपाही भी अमृतसर से आए हैं। अच्छा, ओम शांति। दूसरा रात्रि क्लास है 12-8-64 का। तुम बच्चों को अच्छी रीति याद रहनी है, बूढ़िया भी इस बात को समझें कि अब शिव बाबा के पास जाना है। अंदर में कुछ तो ज्ञान चलना चाहिए ना। भक्त होते हैं, किसको राम याद आता है, किसको कृष्ण याद आता है। बच्चों को नई बात याद है, अब घर वापस जाना है, फिर घर से आकर हम नया चोला लेंगे। अगर इसी याद में भी रहे तो भी बड़ी जबरदस्त कमाई है। हम बाप के पास जाते हैं, फिर वापस आवेंगे। क्या मतलब हुआ? ये शरीर कब तक सड़ते जावेंगे? शरीर सड़ते जावेंगे, आत्मा पावरफुल होती जावेगी, कब तक की बात है? जब तक परमधाम वापस नहीं जावे। परमधाम से जब वापस आवेंगे तो नया चोला मिलेगा, कंचन काया मिलेगी। इस याद में भी रहे तो भी बड़ी जबरदस्त कमाई है। हम बाप के पास जाते हैं, फिर वापस आवेंगे, जितना याद करेंगे उतना एवर हेल्दी वर्षा पावेंगे। कितना सहज है, सिर्फ प्रैक्टिस हो जाए याद करने की। बरोबर नंगे आए थे या फिर नंगे वापस जाना है, सिर्फ यही याद करते रहे। कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु मनुष्यों को अर्थ का पता ही नहीं है कि जीवन में रहते हुए भी दुख दर्दों से मुक्ति की स्टेज आ सकती है। ये तकदीर के लिए बड़ी सहज तदबीर है। जीवन मुक्ति के लिए साक्षात्कार होता है, गोद में जन्म लिया और वर्षा पाई लिया, ऊंच पद पाने के लिए और कुछ भी न करे तो भी आ जावेंगे। पुरुषार्थ प्रिंसिपल रहता है, नई बात है ना। मनुष्य समझते हैं ये तो नहीं हो सकता है, उनको समझाना है। अरे गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति, इसका अब रास्ता बताते हैं। सत्य की देवी देवता जीवन मुक्त होते हैं ना, ये धर्म स्थापन होता है संगम युग पर। अवतार भी अभी संगम के गाए हुए हैं। भक्ति मार्ग में कब दिखाई दिए हैं? भक्ति मार्ग में जो भी अवतार दिखाए हैं वो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में दिखाई दिए हैं। वास्तव में अवतार भी कल्प के संगम के गाए हुए हैं। बाप अच्छी रीति समझाते हैं, क्या कि सतयुग की शूटिंग में कैसे अवतार होता है, त्रेता युग की शूटिंग में कैसे अवतार होता है, द्वापर युग की शूटिंग में कैसे अवतार होता है, फिर कलयुग में भी अवतार गाया हुआ है। जीवन मुक्त थे, अभी जीवन मुक्त बंध में है, तो बच्चों को डसा रहना चाहिए। हमको पढ़ाते कौन है? परमपिता परमात्मा। भगवान वाच भी गीता में है, परंतु साकार होने से इतना नशा नहीं रहता। यहां तो तुम बच्चों को प्रैक्टिकल में नशा है। अच्छा, ओम शांति।